आरवी जिम के गेट पर पहुंची और जैसे ही निगाहें अंदर पुशअप्स करते शान पर पड़ी, उसके कदम जहां थे वहीं ठिठक गए। निगाहें शान के चेहरे पर ठहर सी गईं। ऐसा लगा जैसे बरसों से प्यासे नयनों को बारिश की शीतल बूंदें नसीब हो गई थीं और अब वो बस उन बूंदों में अपने अस्तित्व को भुला देना चाहता था। लब थरथरा रहे थे, सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं, दिल बेचैनी से धड़क रहा था और ये सब शान की मौजूदगी के वजह से था। आरवी अपनी सुधभुत गवाएं एक टक शान को निहारने लगी। अभी आरवी उसकी छवि को अपनी आंखों के सहारे अपने दिल में बसा ही रही थी कि अचानक ही उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मसलते हुए वो उन पर फूंक मारने लगी। उसकी तीन उंगलियां बिल्कुल लाल हो चुकी थीं, चेहरा दर्द से सना था। अगले ही पल उसके कानों में तेज आवाज पड़ी जिससे वो अंदर तक कांप उठी। झिलमिलाती निगाहों को उठाकर देखा तो जिम का दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो चुका था। पहले उस तरफ का दरवाजा बंद हुआ था जिस तरफ आरवी खड़ी थी और उसका हाथ दरवाजे में आ चुका था। आरवी अभी उस दर्द से उभरी भी नहीं थी कि दूसरी तरफ का दरवाजा भी उसके मुंह पर बंद हो गया और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आरवी सहम गई थी। वो भीगी पलकों को उठाकर कुछ पल खामोशी से उस बंद दरवाजे को देखती रही जिसे शान ने बंद किया था, ये वो भी जानती थी। फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए वापस कमरे में लौट आई। उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गई थीं, गोरी गोरी उंगलियां एकदम लाल हो चुकी थीं। दर्द हो रहा था उसे, पर वो दर्द वो अपने दिल में महसूस कर रही थी। उसके सामने शायद इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो अपनी उंगलियों को मसलते हुए रूम में पहुंची और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। ऊपर से पानी बरस रहा था और उसकी आंखें भी बरस रही थीं। आरवी को वो वक्त याद आ रहा था जब शान कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और जब लौटा था तो वो सीधे उसके सीने से जा लगी थी, पर उस वक्त शान ने उसको अपनी बाहों में भर लिया था, उसकी बेचैनी को अपने स्नेह से शांत कर दिया था। तब तो गले लगने पर भी वो उस पर नाराज नहीं हुआ था और एक आज का दिन था जब वो महीने भर बाद बस उसे देख ही रही थी, पर शान को ये भी मंजूर नहीं था, उसने उसको ये हक तक नहीं दिया। एक वो वक्त था जब शान ये जानते हुए कि आरवी छुप छुप कर उसे एक्सरसाइज करते देखती थी उसे कभी रोकता टोकता नहीं था, बल्कि उसको तंग करता था, और एक आज का दिन है जब उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। उसकी उंगलियां दब गईं, सिसकी निकल गई, पर शान को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसके दर्द और उसकी तकलीफ से। इतने वक्त बाद आज शान उसके सामने था और वो इतनी बदनसीब थी कि उसे जी भरकर देख तक न सकी। सोचा था कि जब वो वापस आएगा तो सारे गिले शिकवे मिटा लेगी, पर ऐसा होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे उसे, क्योंकि शान का गुस्सा आज भी जरा भी कम नहीं हुआ था। आरवी कुछ पल यूं ही शावर में भीगते हुए अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही, फिर उसने टब में रखे शान की शर्ट को लेकर अपनी बाहों में भर लिया। उस शर्ट से आती शान की भीनी भीनी सी खुशबू को वो अपनी रूह में बसाते हुए अपने बेचैन तड़पते दिल को राहत पहुंचाने की कोशिश करती रही। चाहती तो थी कि शान को अपने गले से लगा ले और उसको दोबारा कभी खुद से दूर न जाने दे, पर वो पॉसिबल ना हो सका तो उसने ये रास्ता निकाला। कुछ आधे पौने घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर निकली तो शान अब भी वहां नहीं आया था। आरवी की लाल सूजी आंखें उसके दर्द की गवाही दे रही थीं। उसने खुद को संभाला और बालों को समेटकर हल्का सा जुड़ा बनाने के बाद हल्का सा सिंदूर अपनी मांग में सजा लिया। ऐसा करते हुए उसकी आंखें छलक आईं, पर उसने तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ लिया। फिर अंशु को ठीक से सुलाकर उसके माथे को चूमकर रूम से बाहर चली गई। वो मंदिर में गई तो अर्पिता जी पूजा की तैयारी कर रही थीं। आरवी भी उनके पास चली आईं। घर में अभी तक कोई नहीं जानता था कि शान वापस आ चुका है। आरवी पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी उन्होंने चिंता भरे स्वर में कहा, आरवी बेटा आपकी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों हैं? क्या आप रोई हैं बच्चे? आरवी ने उनके चिंता भरे चेहरे को देखा तो अपने दर्द को छुपाकर हौले से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बड़ी माँ, वो तो रात को ठीक से नींद नहीं आ सकी, बस इसलिए आंखें ऐसी हो गई हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। चलिए पूजा करते हैं, पहले ही देर हो गई है और अब और वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। आरवी ने बड़े ही आसानी से बात का रुख ही बदल दिया। अर्पिता जी कुछ पल खामोशी से उसके चेहरे का मुआयना करती रहीं, फिर हामी भरकर आरती की थाल उसकी तरफ बढ़ा दी। आरवी ने जैसे ही थाल को छुआ उसके हाथ में दर्द से उठा और हल्की सिसकी निकल गई। उसके हाथ से आरती की थाल छूटने लगी तो अर्पिता जी ने तुरंत ही उसे थाम लिया। आरवी के सीधे हाथ की तीन उंगलियां जख्मी थीं, जहां से दबा था वहां खून जम चुका था और वो तीनों उंगलियां अब काम नहीं कर रही थीं। थाली को छूते ही उसे दर्द का एहसास हो गया था और वो कुछ पल भी थाल पकड़कर न रख सकी। आरवी अपनी उंगलियों को फूंकते हुए हाथ झटक रही थी। आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं और चेहरा दर्द से सना था। अर्पिता जी उसे ऐसे देखकर घबरा गईं। उन्होंने तुरंत ही आरती की थाल नीचे रखी, फिर उसके हाथ को पकड़कर देखने लगी। उसकी लाल उंगलियां देखकर उन्होंने चिंता भरे स्वर में पूछा, बेटा आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? आरवी ने किसी तरह अपना दर्द अपने अंदर दफन कर लिया और हाथ पीछे खींचते हुए बोली, वो गलती से दरवाजे में हाथ दब गया था, बस उसी से लग गई, पर जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। आज मैं पूजा नहीं कर सकूंगी तो आप ही पूजा कर लीजिए। एक बार फिर उसने बात टालने की कोशिश की, पर इस बार वो सफल नहीं हो सकी। अर्पिता जी ने उसे वहीं फर्श पर बिठाया और उसकी उंगलियों पर हल्का तेल लगाकर उनकी मालिश करने लगी। पहले तो दर्द से आरवी ने अपने जबड़ों को भींचते हुए आंखों को कसके बंद कर लिया। फिर कुछ देर बाद दर्द कुछ आराम हुआ तो उसने आराम से कहा, बड़ी माँ अब दर्द ठीक है। अर्पिता जी का पूरा ध्यान अब तक उसकी उंगलियों पर था जो लाल होने के साथ साथ सूज भी चुकी थी, पर जैसे ही उनके कानों में आरवी की आवाज पड़ी उसकी उंगलियों पर मालिश करती उनकी उंगलियां रुक गईं। उन्होंने निगाहें उठाकर उसे देखा और गंभीरता से बोली, आरवी आपको हमारी कसम, सच सच बताइए कि क्या हुआ है? आपकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं, इसका मतलब हुआ कि आप हमसे झूठ कह रही हैं और आप इतनी लापरवाह नहीं कि अपना हाथ इतनी बुरी तरह जख्मी कर लें। खुद से कभी हाथ इतनी जोर के दब ही नहीं सकता, इसलिए हमें सच सच बताइए कि क्या बात है। अर्पिता जी उसका झूठ पहचान गई थी और अब उससे सवाल कर रही थी जिनके जवाब देते नहीं बन रहा था आरवी से। उसने अपना सर झुका लिया और रूंधे गले से बस इतना ही बोल सकी, वो वापस आ गए बड़ी माँ। इतना कहकर वो सर झुकाए ही सिसकने लगी। अर्पिता जी अब सब समझ गईं। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। आरवी उसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसके आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे जिसे वो पिछले एक महीने से अपने सीने में दबाए हुए थे, पर आज वो दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको यूं रोते देखकर अर्पिता जी की खुद की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, बस बच्चे इतना नहीं रोते, शांत हो जाइए बेटा और आराम से हमें बताइए कि आपके और शान के बीच क्या हुआ है। सब तो अच्छा चल रहा था, शान का व्यवहार आपके लिए बदलने लगा था, वो परवाह करने लगे थे ये हम सबने महसूस किया था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे इतनी बेरुखी दिखाने लगे? आरवी का रोना तेज हो गया। अर्पिता जी ने अब उसे खुद से दूर किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बड़े ही प्यार से बोली,
बेटा ऐसे रोने से तो काम नहीं चलेगा, जब तक आप हमें पूरी बात नहीं बता देती हम चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। बताइए हमें क्या हुआ है, क्यों शान आपसे इस कदर नाराज है? शायद हम आप दोनों के बीच सब ठीक कर सके। सब ठीक होने की उम्मीद दी उन्होंने आरवी को, जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत थी। आरवी ने भीगी निगाहों से उन्हें देखा और सिसकते हुए बोलना शुरू किया, मुझे नहीं पता बड़ी माँ कि उन्हें अचानक क्या हुआ, मुझे सच में नहीं पता कि क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि अब ना वो मेरा चेहरा देखना चाहते हैं ना ही आवाज़ सुनने को तैयार है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आरवी फपक फपक कर रो पड़ी। फिर उसने रोते हुए ही उस रात और अगले दिन की सारी बातें उन्हें बता दी। अर्पिता जी भी कुछ खास समझ नहीं सकी, बहुत से सवाल उनके मन में घूमने लगे जिनके जवाब आरवी के पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने मन ही मन शान से बात करने का फैसला लिया और आरवी को शांत करवाने लगी। उन्होंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि हिम्मत ना हारें, सब ठीक हो जाएगा। तब कहीं जाकर आरवी कुछ शांत हुई और वहीं बैठकर सूनी आंखों से महादेव की मूर्ति को देखने लगी। कुछ देर बाद वो रूम में पहुंची। अब तक वो खुद को संभाल चुकी थी और ये भी जानती थी कि शान अब कमरे में ही होगा। बहुत हिम्मत बटोरने के बाद उसने कमरे में कदम रखा और बेड की तरफ निगाहें उठाई तो जैसा कि उसका अंदाज़ा था शान अंशु के पास बैठा था। अंशु उसकी गोद में चढ़कर बैठी हुई थी और उससे शिकायत कर रही थी, जबकि शान उसको लाट कर रहा था। इस वक्त शान के चेहरे के भाव कोमल थे, चेहरे पर गुस्से या नफरत के भावों की जगह अंशु के लिए उसका प्यार झलक रहा था, लबों पर सौम्य सी मुस्कान फैली हुई थी। आरवी को बेचैन करके वो सुकून के पल जी रहा था। आरवी कुछ पल खामोशी से एंट्रेंस पर खड़ी होकर दोनों को बड़े ही प्यार से निहारती रही। ऐसा नहीं था कि शान उसकी मौजूदगी से अनजान था या वो नहीं जानता था कि आरवी की निगाहें बराबर उस पर बनी हुई हैं। बात बस इतनी सी थी कि वो जानकर भी अनजान बने बैठा था। कुछ देर बाद भी जब आरवी ने उस पर से अपनी निगाहें नहीं हटाईं तो शान ने जलती निगाहों से उसे घूरा, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपनी निगाहें शान पर से हटा लीं और उन दोनों की तरफ बढ़ गई। अंशु शान से लिपटी हुई थी, तभी आरवी की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अंशु बेटा चलो मम्मा आपको नहला कर तैयार कर दें, उसके बाद आपको स्कूल भी जाना है।